ஜெயவல் நாராயண நாராயண ராமச்சந்திர கீ ஜெய். மர்மூட்ட வம்சீ வாலே கீ ஜெய். உபதேச ஓர் ஆதேஷ் देने का न तो मेरा अधिकार है और न मैं उसके लिए पात्र हूँ, या न मेरी सामर्थ्य भी नहीं है और मेरा अधिकार भी नहीं है, क्योंकि मैं एक वयस्क का बालक हूँ। इस कारण से मेरा उपदेश देने का, आदेश देने का शास्त्र से कोई अधिकार नहीं और सामर्थ्य भी हमारी नहीं। सामर्थ्य तो वही महापुरुष दे सकते हैं जो ज्ञानी हैं, त्यागी हैं, व्यक्त हैं, महात्मा पुरुष है, जिनके आसन उच्च कोटि के हैं, जो अपने वाणी से कहते हैं उसी प्रकार से जो करते हैं, वे लोग उपदेश और आदेश दे सकते हैं। आप लोगों की मुझ पर दया है, आप लोगों का मेरे पर प्रेम है, तो मैं बालक की भांति आप लोगों की सेवा के मां प्रार्थना कर दिया करता हूं। उसको आप काम में लावें तो आपका मैं आभारी हूं, आपकी मेरे ऊपर बड़ी दया है। उसको आप काम में नहीं लावें तो आप मालिक हैं, इसके लिए कोई आपको दोष नहीं है। मैं यदि गुरु हूं और गुरु बनकर के यदि उपदेश देऊं और उसको आप काम में नहीं लाओ तो आपको पाप का भागी होना पड़ता है, तो वो तो हमारा अधिकार ही नहीं। मैं एक वयस्क हूं तो अपने वर्णाश्रम के हिसाब से मेरा गुरु बनने का अधिकार नहीं। मैं वास्तव के मां व्यास गिद्दी पर बैठकर कुछ नहीं कह सकता, मैं किसी को अपना शिष्य नहीं बना सकता, मैं किसी को दीक्षा नहीं दे सकता या अपना चरण धोकर किसी को पिलाऊं तो समझो कि घोर नरक की प्राप्ति मुझको हुई। तो ये एक प्रकार से जो है ये न तो मेरा कर्तव्य है और न करना चाहिए। कोई आदमी समझो कि बिना समझे, इस बात को आप जानते ही होंगे कि जहां हम लोग बैठते हैं वहां से कोई चरणों की धूली उठाकर अपने मस्तक पर ले लिया करते हैं, तो अनुचित बात मैं उसको कह देता हूं जो नहीं कहनी चाहिए। यहां तक कह देता हूं कि भाई तुम अनुचित काम कर रहे हो, अन्याय कर रहे हो, इस पाप के कारण तुम्हारे को नरक में जाना पड़ेगा। यदि मेरी सम्मति यह हो कि तुम हमारे चरणों की धूली मस्तक पर लो तब तो हमको नरक में जाना पड़ेगा, और हमारे विरोध करते हुए यदि तुम ऐसा करोगे, हमारे कलंक लगाओगे तो तुम नरक में। यहां तक की कड़ी बात मैं कह दिया करता हूं जो नहीं कड़ी थी। आपको ख्याल करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। भगवान जो है वे न्याय को देखते हैं, सत्य को देखते हैं। आपकी सेवा में कुछ निवेदन किया जाता है कि एक प्रकार से प्रार्थना के रूप में, मैं तो एक साधारण मनुष्य हूं, मैं तो ये कहता हूं कि स्वयं भगवान श्री रामचंद्र जी जो साक्षात ईश्वर थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उन्होंने प्रजा को बुला करके किस प्रकार से विनय भाव से उपदेश दिया है, थोड़ा ध्यान दे करके देखो। एक समय भगवान श्री राम जी ने समझो कि प्रजा को बुला करके आदेश दिया, उस समय में भगवान श्री राम कहते सुनो सकल पूर जन मैं बानी कहूँ ने कहो मैं मता और आनी। हे सकलपुर के वासी जनों, मेरी वाणी को सुनो। मैं कुछ ममता करके नहीं कहता, यानी अहंकार करके नहीं कहता, नहीं अनीति नहीं कहो प्रभु उताई। सुन हो कर जो तुम ही सुहाई, भाई मैं तो मैं अनिति की बात कहूंगा
और न प्रभुता की कि मैं ईश्वर हूँ या मैं राजा हूँ, मेरी आज्ञा का आपको पालना, मेरी आज्ञा का पालन करना पड़ेगा, इस प्रकार का वचन मैं नहीं कहूंगा। आप लोग सुनो और सुन करके के जो बात आपको सुहावनी लगे या अनुकूल मालूम देवे, जो आपको प्यारी लगे, तो उसको आप काम में लाओ। और जो अनीति कछु भाखे हूँ भाई, तो मोही बर जऊ भय विसराई, और हे भाई यदि मैं कोई अनिति की बात कह डालूं तो आप लोग भय को त्याग कर करके के और मुझको मना कर देना। मुझको मना करने के वहां कोई भय करने की आवश्यकता नहीं। आप ख्याल करके देखो कितनी सरलता है, कितनी निर्भयता का वचन है, और सबको अभय देते हैं, सबको एक प्रकार से अभय देते हैं, और कोई प्रकार का भी अहंकार या मान बढ़ाई या मैं ऐसा हूं नहीं कहते। और फिर कहते हैं समझो कि आप मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान थे, राजा जी थे, प्रजा को उपदेश दे रहे हैं, उस समय के बीच के मां प्रजा को क्या कह रहे हैं। सो सेवक प्रियतम है मैं सोई, आसन मान जो प्यारा है और वही मेरा अपना सेवक है जो मेरे शासन को मानता है या मैं मेरी आज्ञा का पालन करता है, राजा है, शासन करता है। इस वास्ता कहते हैं कि कोई मेरे शासन को माने, राजा समझ करके या ईश्वर समझ करके, तो या मैं उसको प्रियतम समझता हूँ। एक तो था प्रिय, एक होता प्रियतर, अरे समझता हूँ जो मेरी आज्ञा का पालन करता है, मेरा अनुशासन मानता है, और इसको माता सेवक समझता हूँ, क्योंकि राजा है तो सब उसकी प्रजा सेवक ही है। किंतु आप ख्याल करो एक प्रकार से मैं और समझो की कोई ईश्वर भी नहीं, तो मैं तो एक प्रकार से तू ये भी नहीं कह सकता कि हमारी बात को जो काम में लाता है उसको मैं अपना सेवक मानूंगा या प्रियतम मानूंगा। मैं तो यही कह सकता हूँ कि सब हमारे बड़े हैं, बुद्ध हैं, उनकी सेवाओं में प्रार्थना है, निवेदन है, समझा विनय है। तो ये कहा जा सकता है कि जो समझो कि हमारी विनय की तरफ ध्यान देकर के कृपा करेगा, तो मैं एक प्रकार से उनका आभारी होऊंगा, मैं एक प्रकार से उनका ऋणी होऊंगा, ये मैं कह सकता हूँ। क्योंकि एक प्रकार से जो पूज्यवर्ग है उनके लिए यही एक प्रकार से कहने किए, नहीं तो वो कभी नहीं होता है। इस वास्ते उनके पालने माने पालने की बात नहीं कह सकता। ये कहता हूँ कि मेरी प्रार्थना जो आपने सुने, ध्यान दें और समझो कि बाहर की भक्ति समझ करके और कृपा करके उसको काम में जाए, तो मैं समझा उसने मेरा बड़ा भारी हित किया, बड़ा भारी मेरा उपकार किया, बड़ा एक प्रकार से मेरे ऊपर उन्होंने दया करी, तो एक प्रकार से मैं उनका आभारी होऊंगा, ये मैं कह सकता हूँ। तो ख्याल करना चाहिए कि एक प्रकार से कि हम तो ये तो नहीं कह सकते कि भाई हम आपको उपदेश देते हैं, आदेश देते हैं, ये आपको एक प्रकार से मानना चाहिए, इतना नहीं।
ये भी नहीं कह सकते कि हम एक प्रकार से कि आज्ञा करते हैं, उसको कोई काम में जावे तो उसको मैं अपना प्यारा समझूंगा या मैं उसको अपना सेवक समझूंगा, ये भी हम नहीं कह सकते। भगवान कह सकते हैं, राजा महाराज कह सकते हैं, समझो कि संत महात्मा लोग कह सकते हैं, ब्राह्मण लोग कह सकते हैं, हमारी त्याग नहीं। तो ये एक प्रकार से आपको एक दिखलाया आपको। अब कहने का ये अभिप्राय है कि वर्ण आश्रम के धर्म की बात है, वर्ण धर्म आश्रम धर्म, तो संक्षेप से ही मैं आपको कहूंगा, क्योंकि उसका विस्तार तो बहुत है और पुस्तकों में लिखा हुआ है, सो आप देख सकते हैं। मनु जी ने ये बतलाया है हमारे वर्ण धर्म के लिए, ब्राह्मण के लिए खटकर्म बतलाए हैं कि जग करना, जग कराना, दान देना, दान लेना, और समझो कि आपने वेद पढ़ना और वेद पढ़ाना, ये जो है जो कर्म है मनु जी ने ब्राह्मणों के लिए बताए हैं, तीन तो धर्म के पालन के लिए और तीन जीविका के लिए। वेद पढ़ाना, और यज्ञ कराना और दान लेना, ये तीन है सो जीविका के लिए। और उच्च कोटि के जो ब्राह्मण होते हैं वे शीलोच्च वृत्ति करते हैं, शील और उच्च जो वृत्ति है वो इससे भी ऊंचे दर्जे की है, वो आजकल एक प्रकार से प्राय नष्ट हो गई। शीलोच्च वृत्ति क्या है? शील और ऊंच, शील उसको कहते हैं कि जो खेत में से धान काट करके ले जाते हैं अपने राजपुताना में, फिर समझो कि वहाँ सीटा निकलता है और उसके बजरी और अपने जुआ जी होया करते हैं, उस वो शील की स्थिति कहते हैं, उसमें ब्राह्मणों का कहे, किंतु आजकल तो वे समझो कि अपने किसान लोग ही काट कर ले आते हैं। दूसरा ऊंच वृत्ति उसको कहते हैं कि जो खड़ा निकालने के बाद के वहाँ जो दाने जो भूमि पर गिर जाते हैं तो उसका हक ब्राह्मणों का है, क्योंकि ब्राह्मण भूदेव है। तो उसी को चुन चुन करके के कपोत की माफक इकट्ठा करके के उससे अपनी जीविका करे, वो एक प्रकार से समझो कि अपने ऋषियों की वृत्ति है, ऋषियों की एक प्रकार से जीविका। वे ब्राह्मण होकर के ऋषि के तुल्य है, इस प्रकार जो अपना अपने निर्वाह करते हैं। तो वो शील और उच्च वृत्ति हो तो एकदम प्राय खत्म हो गई। अब यही है कि ब्राह्मणों के सबसे उत्तम किस्म जो कि आपने यज्ञ कराना या विद्या पढ़ाना, वेद पढ़ाना, इस प्रकार से जो दक्षिणा मिल जावे या दान ले लेना। तो उनके बीच के माँ दान के माँ मनु जी ने दो बात लिखी है, वो तो अमृत के समान दान है जो बिना मांगे अपने आप से आकर के प्राप्त हो। कि महाराज एक प्रकार से समझो ये साधुओं के लिए भी अमृत के समान है कि बिना मांगे कोई चीज ला करके भेंट करे, खाने के लिए खाने की चीज हो, पहनने की हो, पुस्तक हो, कमंडल हो, कोई भी चीज बिना मांगे आकर के मिले वो अमृत के समान है। और भिक्षा के वास्ते उनके लिए खुला है, वे भीख मांग सकते हैं। उनके लिए वो साधु की ब्रह्मचारी की जो भिक्षा है वो शुद्ध है, पवित्र है, अपवित्र भी वहाँ पवित्र हो जाती है उनके प्रभाव से, तो उनके लिए वो चीज है सो पवित्र है। और ब्राह्मणों के लिए समझो कि गृहस्थाश्रम के मां ब्राह्मणों के लिए जो है सो मांग लेना जो है वो मृत है। तीनों के बीच के मां तीन प्रकार की जो जीविका है, उन तीन प्रकार की जीविका के मां कि जैसे समझो कि दक्षिणा लेना यज्ञ करा करके, विद्या पढ़ा करके समझो कि उससे दक्षिणा लेना शिष्य से, तो ये तो उनकी उत्तम वृत्ति है, ये तो एक प्रकार से सत्य वृत्ति है। और वो जो एक प्रकार से समझो कि अमृत है, कौन सी कि बिना मांगे जो आकर मिल जावे, वो ब्राह्मणों के लिए भी बहुत ही अमृत है, गृहस्थियों के लिए भी वो अमृत है। और मांग ले वे वो है तो दान, किंतु मांग करके जो दान है वो मृत है, उसका दर्जा कुछ और सबसे नीचा है। जितनी ब्राह्मणों की वृत्ति उससे सबसे नीचा दर्जा इसका है कि मांग करके के लिए। ये मनु जी ने विस्तार पूर्वक समझो कि मनु की चौथी अध्याय में सब बातें बतलाई है, आप चाहो तो देख सकते। दूसरी बात बतलाई जाती है कि एक ब्राह्मणों के क्षत्रिय और वैश्यों के तीनों के समान धर्म, तीनों के समान धर्म, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य तीनों के समान धर्म क्या है? तो यज्ञ करना, दान देना, विद्या पढ़ना, वेद पढ़ना, वेद का अभ्यास करना और समझो दान देना और यज्ञ करना, तो ये तीनों के लिए ही समान धर्म। इसके बाद के बीच के वहां आपत्ति काल का धर्म भी बताया है। ब्राह्मणों के लिए आपत्ति काल का धर्म ये बताया गया है कि ब्राह्मण वृत्ति से उसका निर्वाह नहीं हुए तो आपत्ति काल में क्षत्रिय वृत्ति कर सकते हैं। कि जैसे पूर्व के जमाने के बीच के माँ द्रोणाचार्य जी, कृपाचार्य जी, अश्वत्थामा आदि जो ब्राह्मण हुए वे एक प्रकार से थी क्षत्रियों का कर्म करके युद्ध करते थे और छात्रवृत्ति थी वो। और यदि इस प्रकार से भी काम नहीं चले तो उसके बाद में वैश्य वृत्ति कर सके, क्रिय विक्रिय करके भी अपने जीविका को निर्वाह ब्राह्मण कर सके। किंतु ये कहा कि भी स्ववृत्ति जो है एक प्रकार से नौकरी जो है वो नहीं करनी चाहिए, नौकर बन के चाकरी जो नौकरी जैसे समझो कि आजकल अपने ग्वाला नौकर करते हैं वो वृत्ति ब्राह्मण के लिए निषेध करी गई। और ये भी कहा गया कि यदि कृषि गोरक्ष वाणी और ये जो वैश्य वृत्ति है उसके वत्मा भी उसको रस नहीं बेचना चाहिए और खुद ब्राह्मण को हल नहीं चलाना चाहिए, खेती का काम करे, तो इतनी इतनी थोड़ी थोड़ी बात उसके बीच के वहां से और अपने निषेध कर दी गई। अब रही क्षत्रियों के वास्ते, तो क्षत्रिय जो है उनके लिए ये तीन तो आपने यज्ञ करना और दान समझो कि देना और विद्या पढ़ना वेद पढ़ना ये उनका सामान्य धर्म है जो ब्राह्मण का है वो क्षत्रिय का। किंतु ये याद करना चाहिए क्षत्रिय को एक प्रकार से कभी जो है वेद पढ़ना नहीं थी, दान देना नहीं थी, यज्ञ कराना नहीं थी। जो क्षत्रिय होकर के अर्शन जो कि आपने विद्या पढ़ाता है समझ लो कि एक प्रकार से थी। ऐसी बात आती है कहीं कहीं कि बड़े बड़े ऋषि और महात्मा लोग क्षत्रियों के पास में गए हैं विद्या के लिए, तो उन्होंने दान के रूप में वो विद्या दी है। ऐसा नहीं कि आपने गुरु बनकर के उसको शिष्य बना करके विद्या दी, तो दे विद्या किंतु दान के रूप में उन्होंने विद्या दी है कि महाराज आप तो ब्राह्मण हो मैं क्षत्रिय हूं तो मेरा दान दे मेरा काम है, नहीं कि एक रुपये से आपको शिष्य बनाना है मेरा काम। तो इसी प्रकार से थी आपने दे सकते हैं। और दूसरों को यज्ञ कराना जो है ये तो करा नहीं सकते, यदि ऐसा करावे तो ब्राह्मणों की वृत्ति का छेदन हो जाएगा, इससे उनको घोर नरक मिलेगा। और इसी प्रकार से थी दान लेना भी उसके लिए कलंक है, क्षत्रिय के लिए दान लेना भी कलंक है, और उनके लिए समझो कि एक प्रकार से विवाह शादी करा देने और करा देने वो भी उनके लिए बहुत ही घृणित बात है। ऐसे ही वैश्य के लिए, मैं वैश्य का बालक हूँ, चाहे मैं विद्या पढ़ मैं तो इतना विद्वान भी नहीं हूँ, मुझको तो न कोई विदों का इतना ज्ञान है, न कोई संस्कृत का ज्ञान है, न कोई व्याकरण का ज्ञान है, न मुझको तो हिंदी भाषा का ही पूरा ज्ञान नहीं है। तो मैं तो एक प्रकार से समझो कि अक्षरों के बीच के हमारे निरक्षर तो नहीं कहना चाहिए किंतु निरक्षर के तुल्य कहा जा सकता है। किंतु मैं यदि विद्वान भी हूं तो एक प्रकार से मेरा यह कर्तव्य नहीं है कि कहीं विवाह शादी होता हो और वहां जाकर के मैं विवाह सो कराने के वास्ते बैठकर दक्षिणा लिया हूं विवाह करा दूं, ये मेरा कर्तव्य नहीं हो सकता, चाहे मैं कितना ही विद्वान हूं। दूसरी बात यह है कि एक प्रकार से थी समझो कि दान लेने का भी मेरा अधिकार नहीं है कि मैं किसी का ऐसा दान दूं और अपने अपने समझो उससे अपना कुटुंब का पालन करूं, वो भी मेरे लिए कलंक है। एक प्रकार से थी समझो कि किसी अंश के वहां दान का अंश माना जा सकता है कि जैसे गीता प्रेस है संस्था है और जैसे ये यहाँ का काम चलता है तो हम सब भाई लोग खाली 22-22 लोग रुपया इकट्ठा करके और वो भी रुपया कैसे कि कोई 100 रुपया लगाना चाहो तो उसका 50 या 25 ही उसका लिया जावे और वो लेकर के और यहाँ वैश्यों की सेवा में और ब्राह्मणों की साधुओं की सेवा में उसको लगा दिया गया। तो वो एक प्रकार से ये जो काम है ये भी हमारा काम नहीं था, ये ब्राह्मणों का काम है। क्यों कि ब्राह्मण लोग जो है एक प्रकार से अच्छे जो ब्राह्मण होते थे तो उन पर विश्वास करके कि लोग दिया करते थे आवश्यकता के मुताबिक तो उसमें रख लिया करते थे और बाद बाकी समझो कि अच्छे काम में लगा दिया करते थे। इस न्याय से थी कि लोग देते थे कि भाई हम तो जानते नहीं कोई हमारे को ठग कर ले जाएगा और ये विद्वान है ब्राह्मण है महापुरुष है ये ठीक समझ करके हमारे धन का उपयोग ठीक हो जाएगा, इस दृष्टि से थी समझो कि ब्राह्मणों के हाथ में देकर के गई और वो एक प्रकार से दिया करते थे। और ब्राह्मण लोग जो है वो अपना थोड़ा उसमें कम से कम जो अपने निर्वाह के माप रख करके सब उनका उत्तम से उत्तम काम में लगा दिया करते थे। अब हम ब्राह्मण नहीं है इसलिए उसमें से हम थोड़ा भी नहीं रख सकते बल्कि अपना मिला सकते हैं उसमें अपना शामिल कर सकते हैं उससे ले नहीं सकते किसी भी हालत के बीच के वहां तो उसके शामिल करके के भी यदि एक प्रकार से समझो लोगों को जो देना है वापस बांट देना है तो वो उसमें मिलाना क्यों है कि लोगों का पैसा जो इकट्ठा करके उसको जो छूना है वो भी हमारे लिए पाप है, उसका प्रायश्चित है कि उसके साथ में किसी मिला करके देना उसका एक प्रायश्चित है। अरे अच्छे दीदी इस काम के लिए अच्छे ब्राह्मण खड़े होकर ये काम करे तो वास्तव के वहां एक नंबर बात है शास्त्र के अनुकूल एक नंबर बात वो है, ये हम जो करते हैं ये तो समझो कि शास्त्र से कुछ विरुद्ध भी है माना शास्त्र से कुछ दिशा दर्जा भी है इसलिए हम थोड़ा लज्जित भी होते हैं कि ये काम जो है सो हमारा नहीं। हम आपको जो शास्त्र की बात कहते हैं गीता की, रामायण की, भागवत की, महाभारत की, श्रुति स्मृति इतिहास पुराणों की बात कहते हैं, तो ये एक प्रकार से थी हमारा कहने का पद नहीं है। हम एक प्रकार से थी कहने का बिल्कुल हमारा पद नहीं, इसलिए हम बार बार समय समय पर कह देते हैं कि भैया मैं एक आपकी सेवा में प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ, एक आगे नहीं करता, मेरा उपदेश देने का अधिकार नहीं, व्याख्यान देने का अधिकार नहीं, एक भी नहीं पढ़ाने का अधिकार नहीं, केवल मात्र विनय करने का प्रार्थना करने से बच्चा अपने बड़ों के सामने कर देता है, इस प्रकार से मैं भी कर देता हूँ। आप ठीक समझो तो उसको खम्मन ले आओ, नहीं ठीक समझो तो आपके लिए कोई दोष की बात नहीं, इतना साथ में कह देता हूँ। किंतु फिर भी विचार करने का विषय यह है कि ऐसा भी करना हमारे लिए दो नंबर है। एक नंबर तो समझो कि ये कहना ब्राह्मणों का, साधुओं का ही, वही कह सकते हैं, उनका तो अधिकार है, हम तो अनाधिकार चेष्टा करते हैं। सो भी आप लोगों का प्रेम है, मेरे ऊपर दया है, तो आप लोग उनकी दया और आपका प्रेम मुझको बाध कर देता है, तो इस वास्ते वो अनुचित काम भी मैं कर देता हूँ। नहीं, वास्तविक चीज के माँ एक रूप से मेरा कोई कर्तव्य तो नहीं। आप ख्याल करके देखें कि सूत जी थे, वे सूत जो है तो सब शूद्र को कहते हैं, एक प्रकार से थी सूत जाति जो है, जैसे रस चलाने वाली जो जाति है, माने सारथी का काम करने वाली जाति, उसको सूत कहते हैं। अब ये वैश्यों के तुल्य है, वैश्यों से कुछ नीचे है, शूद्रों से श्रेष्ठ है। कह रहे कि भाई आपने सूत जी महाराज जो है तो कहा करते थे उसके विषय के बीच के माँ भी समझो बलदेव जी ने यह बात देखी है तो उसका सूत जी का सिर उतार लिया, तुम्हारा क्या अधिकार इस प्रकार से कहना। बात ठीक है, पर ब्राह्मणों के हुक्म से, ऋषियों के हुक्म से कहते थे, कोई अपने स्वतंत्र नहीं कहते थे, समझा। इसलिए उन्होंने कहा अपने बलदेव जी को कि आपने ये अन्याय किया। ऋषियों ने कहा क्योंकि इनका कोई कसूर नहीं था, ये तो एक प्रकार से थी हमारे लोगों के कहने से हमारी आज्ञा पाकर कहा करते थे, इसलिए इनका कोई भी अपराध दोष नहीं। विदुर जी महाराज जो है शूद्र थे, तो उन्होंने पूछा एक प्रकार से थी वेदों की बात पूछी आपने धृतराष्ट्र ने, तो उन्होंने ये महाभारत के उद्योग पर में कथा आती है, तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं कह सकता वेदों को, क्यों, मैं शूद्र हूँ, तो मैं संत सुजात को बुला देता हूँ, वे आपको उपदेश करेंगे वेदों का। उनको बुला करके उनसे उपदेश करवाया, तो ये शास्त्र की मर्यादा की बात आपने मैंने कही है। हम लोग तो कहाँ मर्यादा का पालन करते हैं, समझो कि मर्यादा से एक रूप से गिरे हुए हैं। तो भगवान जो है एक प्रकार से थी अपने, जो आदमी मन के बीच के माँ अपने कसूर को कसूर मानता है तो भगवान उसके अपराध को क्षमा कर दिया करते हैं, और जो कसूर को कसूर नहीं मानते वो डबल अपराध करता है, एक तो अपराध नहीं दूसरा अपराध और करता है। तो क्षत्रिय जो है उनके लिए आपने बताया गया, भगवान गीता में कहते हैं सूर्यं तेजो धरती दाक्षम युद्धे धारे प्रति देना, ईश्वर भाव माने शासन का भाव, ये क्षत्रिय का स्वाभाविक सुकर्म बताया भगवान ने। इसी प्रकार से थी मनु के बीच के वहां जी क्षत्रियों का यही एक रूप से धर्म बताया है, और वैश्य का जो है कृषि गोरक्षवाणी जम वैश्य कर्म स्वभाव, जो खेती करना और व्यापार करना और समझो कि कृषि गोरक्ष और गौ की रक्षा करना, ये एक वैश्य का स्वाभाविक कर्म है, ये वैश्य के लिए जीविका का भी यही कर्म है, और निष्काम भाव से किया जाए तो आत्मा का उद्धार भी हो जाता है। कृषि गोरक्षवाणी खेती जो है वो हर व्यापार क्रिय विक्रिय और गौ का पालन, मनुजी इससे कुछ और अधिक बताते हैं। मनुजी ये कहते हैं साथ साथ के माँ कि गोपालन की जगह वे पशु पालन करते, ये पशुओं की रक्षा करना, ये तो भगवान ने सोचा कि कलयुग आने वाला है, अरे सब पशुओं का पालन तो होगा कि नहीं होगा, गौ को तो रखो। इसलिए उन्होंने गौ शब्द रख दिया कि गौ का पालन करना, और रक्षा करने के लिए ये देखा कि रक्षा के बीच में तो अहंकार आ जाएगा, तो पालन करना रखा कि गौ का पालन करना। वास्तव में जो रक्षण जो धातु है दोनों का एक ही अर्थ है, पर एक अर्थ होते हुए भी एक प्रकार से थी थोड़ा स्वारस्य है कि उनका अपने गवा की सेवा करना। दूसरी बात यह है उसमें एक उसी दिन जो है ब्याज खाना ये भी वैश्य के लिए लिखा, ब्राह्मण के लिए नहीं। तो ब्याज खाने वाले जो वैश्य है वे नीची कोटि के माने जाते हैं मनु के बीच में, इसलिए भगवान ने उसको छोड़ दिया कि नहीं अपने किसी को ऋषि वाणी नहीं तुम्हारा करो है वो भी छोड़ो चौदह। तो व्यापार के विषय में जो जितना ब्याज लिया जावे वो बुरा नहीं है। नहीं तो मनु जी खूब जोर कहते हैं कि जो केवल ब्याज के ऊपर रहता है और केवल ब्याज का एक प्रकार जिसका पैसा है उसके पैसा का जो अन्न है वो भिष्टा के समान। मनु देख लो निकाल करके गए, कोई हमारी बात थोड़ी है कि हम अपने घर की बात कहते हैं। तो इतना घृणित उसका पैसा बताया है, इसलिए भगवान ने उस घृणित बात को कहा ही नहीं, यही कहा कि कृषि गोरखवाणी उस व्यापार के साथ के माँ जितना ब्याज का संबंध है आपसे के माँ लेन देन के विषय में व्यापार के साथ में ब्याज उपजाना जो है वो तो व्यापार का ही अंग है, किंतु अलग केवल मात्र जिसके ब्याज के ऊपर ही निर्भरता है वो तो घृणित चीज मानी गई है। तो इस प्रकार से इन दिनों के बीच के माँ कृषि गोरक्ष वाणिज्य के बीच के माँ भी समझो तो एक प्रकार से थी अपने खेती का जो काम है केवल खेती का जो काम है वो इन तीनों में से नीचा है, क्योंकि उसमें हिंसा विशेष होती है, इस कारण से उसको तीनों में से कुछ नीचा बढ़ रहा है। और गौरक्षा जो है और वाणिज्य जो है ये खूब बढ़िया काम है। बाबा नंद बाबा के यहाँ से लाखों गवां थी, वह जाति के वैश्य थे, उनके दूध दही बेचना और उनके गांवों का पालन करना ये उनका काम था नंद जी का। तो इस प्रकार से थी ये दूध दही का समझो बेचना गांवों को पालन करना ये सब एक प्रकार से वैश्य का कर्म है। गौ बेचने के लिए तो निषेध आता है किंतु एक प्रकार से पालने के लिए निषेध नहीं आता। तो वैश्य के माँ यदि आपत्ति होए और आपत्ति काल के माँ वैश्य को क्या करना चाहिए और आपत्ति काल में क्षत्रिय को क्या करना चाहिए, तो क्षत्रिय जो आपत्ति काल के बीच के माँ वैश्य की वृत्ति कर सकता है, व्यापार कर सकता है क्षत्रिय आपत्ति काल के बीच में, किंतु ब्राह्मण की वृत्ति कभी नहीं कर सकता। ब्राह्मण की जीविका यदि क्षत्रिय करने लगे तो उसका पतन हो जाएगा। आपने से जो नीची जाती है तो उसकी जीविका आपत्ति काल में कर सकता है, किंतु आपत्ति काल के माँ भी अपने से ऊंची जाति की वृत्ति उसका वृत्ति छेदन करना बड़ा भारी पाप। और वैश्य जो है उसके लिए समझो आजकल तो वैश्य अध्यापक हो जाते हैं, किंतु शास्त्र के हिसाब से उनका अधिकार नहीं। तो वैश्य को भी एक प्रकार से अपने से समझो कि उच्च वर्ण की वृत्ति नहीं करनी चाहिए, क्षत्रिय की वृत्ति या एक प्रकार से ब्राह्मण की वृत्ति। तो वैश्य जो है शिल्प का काम कर सकते आपत्ति पड़ने पर, शिल्प जो है एक प्रकार से जैसे कोई कपड़ा बनना, जैसे कोई छुतार का काम है, जैसे सुनार का काम है, लोहार का काम है, ये सब जो जितना जो शिल्प का काम है ये सो आपत्ति काल के में वैश्य कर सकता है। और शूद्र का काम भी कर सकता है, सेवा कर सकता है, वैश्य नौकरी कर सकता है। ब्राह्मण के लिए निषेध है नौकरी का और वैश्य के लिए निषेध नहीं है। इसलिए जो हमारी विधवा माता बहने हैं जो समझो कि आपने वैश्य जाति की स्त्रियां और विधवा है उसके लिए तो मैं ये प्रार्थना करूंगा कि आपके पास में यदि आपके ऊपर आपत्ति है, आपके खाने का निर्वाह नहीं होता है या पीर से या ससुराल से, तो आप लोगों को समझो कि आपने परिश्रम करके सेवा कर करके भी अपना निर्वाह को करना कर्तव्य है आपत्ति काल के बीच के माँ। दूसरे के यहाँ जैसे आप रसोई बना सकती हो और रसोई बना करके उसे आपने समझो कि आपने महीना ले सकती हो, दास भाव कर सकती हो, कोई भी आपत्ति की बात नहीं है शास्त्र के हिसाब से। बल्कि ब्राह्मणी होकर के यदि कहीं रसोई बना करके और आपने नौकरी करे तो शास्त्र में निषेध है। ब्राह्मण होकर के कोई समझो कि रस बिक्री करे, हलवाई की दुकान करे या वाशा करे तो निषेध है, किंतु वैश्य जो है वो वाशा भी खोल सकता है, हलवाई की दुकान खोल सकता है, उनकी स्त्रियां समझो कि आपने नौकरी कर सकती है, वो खुद नौकरी कर सकते हैं, विधवा स्त्री नौकरी कर सकती है, समझो आपने वैश्य भाई नौकरी कर सकते हैं। मैं उसका वो अच्छा समझता हूँ, कोई विधवा स्त्री दूसरे से सहायता लेकर के अपना जो जीवन निर्वाह करती है वो तो उसके वास्ते घृणा है, वो तो दान वृत्ति है, दान वृत्ति के लिए तो उसके लिए पाप है, वो तो ब्राह्मण वृत्ति है। वैश्य जाति होकर के, क्षत्रिय जाति होकर के और समझो कि दूसरे से सहायता लेकर के अपने शरीर का निर्वाह करे तो उसके वास्ते घृणा की बात है, किंतु चाकरी कर करके अपने परिश्रम कर करके अपने समझो शिल्प कर करके सेवा करके अपने शरीर का निर्वाह करे उसके वास्ते कोई दोष नहीं है शास्त्रों के लिए। इस वास्ते जो क्षत्रिय जाति है, जो वैश्य जाति है, यानी क्षत्रिय जो है वो वैश्य वृत्ति से काम चला सके और वैश्य से नहीं चल सके तो शूद्र वृत्ति से काम चला सके, शील वृत्ति से काम